जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जो श्रीमती राधा रानी है उनका आविर्भाव आपके दिन है और सबसे अधिक पावन दिन है और ऐसे विसर्जन है श्रीमती रानी का ऐसा आविर्भाव दिन है सबसे अधिक कृष्ण के लिए प्रिय दिन है। क्यों कृष्ण के लिए प्रिय है? क्योंकि श्रीमती राधी का कृष्ण की प्राण धन है। तो कृष्ण के लिए श्रीमती राधी का प्रिय है, जबकि राष्ट्रीय उनके लिए प्रिय है, उनसे भी अधिक प्रिय या महत्व दिन जो भी धर्म मंडल गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण की सेवा की अभिलाषा लेकर भगवत भजन में लगे हुए हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रीमती राधिका के द्वारा ही कोई व्यक्ति कृष्ण को सर्व कर सकता है। कृष्ण की सेवा बिना राधिका के असंभव है, उनको अप्रोच किए बिना असंभव है। तो हमारी इस परंपरा में जितने भी महान आचार्य मिले हैं वो श्रीमती राधिका की डायरेक्ट सेवा में है, या तो उनकी दांतिया के रूप में है या उनकी मंडलियों के रूप में उनकी सेवा कर रही है। तो कृष्ण की सेवा का एकमात्र अधिकार केवल श्रीमती राधिका को है, इसलिए हम लोग चाहते हैं सेवा अधिकार तो वास्तव में कोई व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को अप्रोच करता है तो उसे राधा रानी की जो सर्वंट है उनको अप्रोच करना होगा, तभी वास्तव में वो कृष्ण की सेवा करने की योग्यता धारण कर सकता है। इसलिए हम गुरु को राधा श्रेष्ठ सति कहा जाता है। श्रीमती राधिका के जो प्रिय सर्वंट है वो श्री गुरु है। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में दो ग्रुप हैं। एक है कृष्ण का अपना ग्रुप है, कृष्ण का अपना दल है, उसका अपना पार्टी है, और लेकिन दूसरा भी एक पार्टी है, किसका है? श्रीमती राधिका का। तो ऐसा श्रीमती राधिका का जो दल है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी परंपरा के महान आचार्य हैं वो कृष्ण के ग्रुप में नहीं है, कृष्ण के पार्टी में नहीं है, कृष्ण के दल में नहीं है। तो कौन से पार्टी में सेवा में लगे हुए हैं? श्रीमती राधा रानी की पार्टी में है। तो इसलिए जो साधक है उसको श्रीमती राधिका का जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है वो समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में सहजिया उनका प्रचलन बहुत अधिक है, प्रचलन है। सहजिया का मतलब है कि आध्यात्मिकता को जो बहुत अधिक सहज ले लेते हैं, ब्रज में नाना प्रकार के गीत उन्होंने प्रचलित किए हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे निम्न स्तरीय गीतों के द्वारा राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, वो असंभव है। जब तक व्यक्ति श्रीमती राधा रानी का जो दिव्य स्थान है उसको समझता नहीं तब तक वो कृष्ण को कैसे समझ सकता है। गाना बहुत इसलिए है राधे राधे क्या है जपा करो, राधे राधे जपा करो या राधे राधे बोलो करो चले आएंगे बिहार। तो बिहार आने वाले नहीं है, आपका जन्म बिहार में हो सकता है, मेरा जहाँ भारत के जंगल है तो आपको भी चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो वास्तव में राधा रानी इतनी चर्चित नहीं है, राधा रानी का नाम लेने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। वो क्वालिफिकेशन हमें प्राप्त होता है वैष्णव के द्वारा। इसलिए हम हमारी परंपरा में देखते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को अप्रोच करता है, उनके दिव्यता को, उनके सर्वोत्कृष्ट स्थान को समझता है, और जब व्यक्ति श्रीमती राधिका के प्रकार का कटाक्ष प्राप्त करता है तभी उनके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रवाहित होती है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण भक्ति का स्वरूप है। कृष्ण के पास वो शक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा वो जिनको भक्ति दे सकते हैं, असंभव है। हम भक्ति का जो भंडार है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा कि आप कृष्ण को फ्लावर ऑफर करना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपको फ्लावर कृष्ण श्रीमती राधिका के हाथ में मिलेगा। आपका जीवन इस प्रकार से श्रीमती राधिका का जो दिव्यता है हम उसको समझना होगा उनकी सेवा हम करने के लिए। तो भगवत सेवा व्यक्ति नाना प्रकार के रसों में करता है। शांत शांत की भावना जिसे भावना कहा जाता है। भगवान की सेवा हम पांच प्रकार की भावनाओं में करते हैं, रसों में करते हैं, जिसे रति कहा जाता है। व्यक्ति भगवत सेवा करता है शांत भावना में, हाँ, और जब शांत भाव में सर्विस करते हैं, भगवान की गाय है, बकर आदि है, गरीब प्राणी है, मोर आदि है, और दूसरे प्रकार का जो भावना है वो दास भावना से भगवान की सेवा की जाती है, जिसे दास कहते हैं। या फिर सत्य है सखा के रूप में भगवत सेवा करता है, वात्सल्य के रूप में भगवत सेवा करता है, भगवान को अपना माता पिता भगवान को अपना पुत्र के रूप में देखकर उन पर केयर करना चाहता है, उनको संरक्षण देना चाहता है। और एक तरह है और एक ऊंची भावना है जिसे हम माधुर्य भावना या श्रृंगार भावना कहा जाता है कि कृष्ण एक प्रेमी है और प्रेमिका के रूप में हम भगवत सेवा की जाती है। तो ये पांच प्रकार की भावनाएं है भगवत सेवा में अपने अपने स्थान के सर्वोत्कृष्ट है, अपने अपने स्थान में पूर्ण है। हर एक व्यक्ति जिस भावना में भगवत सेवा कर रहा है बुद्ध भावना में वो परिपूर्ण रूप से संतुष्ट है, और ऐसी भावना को केवल शुद्ध जीव में हम प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा धन सोचती न धाक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परां। ये जो भावना है इनमें भौतिक काम वासना का देश मात्र भी मिश्रण नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मत भक्ति लभते पराम, ये सारे पांच जो रस है भावनाएं हैं भगवत सेवा के वो पराम है। परा का मतलब है प्रेम है, सर्वोच्च है, जिसको और रूपों को स्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आत्मकुल्य कृष्णा को शीलन भक्ति देता है। ये उत्तरवा भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन हम भगवान को अप्रोच करते हैं, श्रीमती राधिका जो उनकी शक्ति है उनको अप्रोच करते हैं, नाना प्रकार के भौतिक कर्मशों को लेकर भौतिक इच्छाओं को लेकर उनको हम अप्रोच करते हैं, तो वास्तव में उसके लिए परा परा श्रेष्ठ होना आवश्यक है। क्योंकि ये परा की भावना क्या है, देहात्म बुद्धि से परे होना वो परा कहलाता है, सर्वोत्कृष्ट धरातल है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा ये जो पांच भावनाएं हैं ये परिपूर्ण है, हर एक भावना में जो भक्त है वो अपने अपने स्थान में स्थित है, लेकिन फिर भी हमारे जो रसाचार्य हैं, रसाचार्य रसों का जो विश्लेषण करते हैं श्री रूप गोस्वामी, वो कहते हैं कि फिर भी इन सबके अलग अलग धरातल में भगवत सेवा करने की जो विभाग है वो अधिक बढ़ती जाती है। तो सबके भाव में भगवत सेवा करता है, राष्ट्र भाव में है, उसके अधिक सखा के रूप में भगवत सेवा करने का जो विभाग है आनंद है बिजनेस है वो अधिक गहरा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा इन पांचों रूपों में भगवान के प्रति प्रेमी और प्रेमिका की जो भावना है उसमें भगवत सेवा का जो विभाग है वो बहुत अधिक है। तो माधुर्य कहा गया है, फिटनेस कहा गया है। इस प्रकार से ये जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम के पात्र हैं वो कौन है, कृष्ण है। हम कृष्ण को ऑब्जेक्ट ऑफ लव कहा जाता है, प्रेम के विषय है, और उनके जो भक्त है वो उस भगवत सेवा के आश्रय है। इसी कारण से ये जो सर्वोच्च प्रेम हम वृंदावन वासियों ने विशेष रूप से वृंदावन की गोपिकाओं ने प्रकट किया था, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो प्रेम जो श्रीमती राधिका का है या वृंदावन की ब्रज वधुओं का है वो सर्वोच्च है। इसलिए महाप्रभु ने कहा रम्या काश का उपासना ब्रज वधु गर्जेन मा कल्पिता, कि ये जो ब्रज वधु है, महाप्रभु कहते हुए आपको पूछे कि आप कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोसेस क्या है आपका भगवत सेवा करने का, तो हमारा प्रोसेस क्या है, जो रम्या रम्या में जो वृंदावन की रमणिया है गोपिकाएं हैं जिन्होंने भगवत सेवा का जो सर्वोच्च सीमा है वो प्रदर्शित किया है, रम्या काशी की उपासना इसकी उपासना, हम इनके ऊपर शंकराचार्य करके माया लागू थे, उन्होंने भी गोपिकाओं के ऊपर उनका उनके ऊपर अष्टकम लिख दिए, ललिता अष्टकम है, गोपिका अष्टकम है, अलग अलग अष्टकम है, तो वो भी ये जो वृंदावन की ब्रज वधु है उनका वंदन करते हैं, क्योंकि उनकी जो उपासना है वो सर्वोत्कृष्ट है। हम और उनमें सर्वोत्कृष्ट जो सेविका है भगवत सेवा की जो परिपूर्णता का जो व्यक्त है वो श्रीमती राधिका है, जो टॉप मोस्ट गोपी है। तो श्रीमती राधिका कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है कि मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी पड़ोसी, ऐसे कोई नहीं है, बल्कि बाकी संप्रदाय के लोग कहते हैं कि आप ये जो राधा रानी है ये ब्रज की वृंदावन की नॉर्मल स्त्री है, नॉर्मल गोपिका है, आप लोगों ने उनको लक्ष्मी से भी बढ़कर स्थान प्रदान किया है। लेकिन गौड़िया वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग शास्त्रों के आधार पर है, वो कहते हैं कि श्रीमती राधिका लक्ष्मी से बढ़कर नहीं है बल्कि लक्ष्मी का ही स्रोत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णनाथ कविराज कहते हैं अवतार कृष्ण ऐसे करे अवतार अंशी राधा ऐसे तिला बने रविस्तार, कि जो इस प्रकार से कृष्ण सारे अवतारों के उद्गम स्थान है स्रोत है, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका का भी सारे जितने भी लक्ष्मिया है द्वारका के जितनी सारी रानिया है रुक्मिणी से लेकर सत्यभामा आदि जो रानिया है जीवन अयोध्या की जो सीता देवी है मूल सत्ता मूल स्रोत कौन है श्रीमती राधिका है। जिस प्रकार से कृष्ण सारे अवतारों के उगम स्थान है, तो आगे कृष्ण सर्वशक्तिमान है, हम सारे शक्तियों के स्रोत है। हम भगवत गीता में प्रभुपाद लिखते हैं पराश शक्ति हृदय को सूर्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाश नाना प्रकार की शक्तियां भगवान के पास है, क्योंकि भगवान तभी हो ही नहीं सकते जब तक उनके पास शक्ति नहीं है। कोई राजा कैसे हो सकता है जब तक उसके पास प्रजा ना हो, तो उसी प्रकार से हम शक्तिमान कैसे हो सकता है जबकि जब तक उसके पास शक्तियां नहीं है। तो भगवान की सारी शक्तियों का विभाजन किया जाए तो वो सारी शक्तियां एक हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी समझ के लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरी दो शक्तियां हैं, मूलतः एक परा है और दूसरी अपरा है। एक भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति का मतलब है बहिरंगा शक्ति, अपरा शक्ति जो निकृष्ट है जो जड़ है। इस प्रकार से ये जो भौतिक शक्ति है भगवान की एक विशेष शक्ति है, दूसरी शक्ति भगवान की है जिसको आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है, अंतरंगा शक्ति कहा जाता है जिसको भगवान कहते हैं परा उत्कृष्ट शक्ति है चेतन शक्ति है। तो ऐसी भगवान की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं आध्यात्मिक शक्ति एक ही है, लेकिन फिर भी वही आध्यात्मिक शक्ति भगवत सेवा में तीन प्रकार का काम करती है, इसलिए उनके अलग अलग नाम है। जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद कहा करते थे कि कोई एक व्यक्ति स्वामी है मालिक है और उसकी उसके पास एक नौकर है सेवक है, वही नौकर जब चौकीदार का काम करता है तो चौकीदार कहलाता है, वही व्यक्ति जब भोजन बनाता है तो उसको कुक कहा जाता है। वही व्यक्ति जब ड्राइविंग करता है अपने स्वामी के लिए उसको ड्राइवर कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान की एक ही आध्यात्मिक शक्ति बलवत सेवा के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं और उनके प्रमुख का तीन विभाजन कृष्णदास बलिराज चैतन्य चरितामृत में करते हैं। वो कहते हैं तीन शक्तियां क्या है भगवान के अंदर अंतरंग शक्ति। एक तो है संधिनी। संधिनी का मतलब संधान, जिसके द्वारा भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और इस भौतिक जगत के सबके अस्तित्व का आधार है वो शक्ति। भगवान का आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि इन सबका आधार है, इसको सत कहा जाता है। इसलिए भगवान को कहते हैं सत शिव आनंद विग्रह। तो ये सत हमको कहती है उनकी शक्ति है। और दूसरी शक्ति क्या है भगवान के अंतरंग का, जिसको कहा जाता है संवित। वित का मतलब है नॉलेज। शक्ति है समित शक्ति है जिसके द्वारा कृष्ण अपने आप को जानते हैं और जिस शक्ति के द्वारा कृष्ण इस सारे जगत आदि को जानते हैं। और वो समित शक्ति यदि किसी जीव के हृदय में प्रवेश करती है, प्रवेश करके मतलब उस जीव के हृदय में भगवान का नाम रूप गुण लीला और धाम इनके प्रति दिव्य आकर्षण और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के हृदय में भगवान की जो संवित शक्ति है वो प्रकट हो रही है और इसी शक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको चित्त शक्ति कहा गया है। और भगवान की तीसरी जो अंतरंग शक्ति है जिसको अल्हादी अल्हाद प्रहलाद प्रहलाद प्रकृष्ण रूपे ने अल्हाद आनंद जिसको दिया हम हरसिंहदेव ने उसको प्रहलाद कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो अल्हादिनी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा कृष्ण आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं और उसी के द्वारा उस शक्ति के द्वारा भगवान जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। तो वास्तव में इस संसार में हम आनंद की खोज में हैं, लेकिन जब तक ये अल्हादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश नहीं होगी, अल्हादिनी शक्ति की अनुकंपा नहीं होगी, तब तक हमारा जो प्रयास है जिस जगत में आनंद अनुभूति का वो विफल है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भक्ति में पोषण करते हैं केवल इस अल्लाह की शक्ति उनके हृदय में संचालित करते हैं, जिसके कारण भक्त के हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव वो कर पाता है। ये तीनों शक्ति बिल्कुल इस जगत में विकृत रूप में हमें पाई जाती है। संधि शक्ति का मतलब है आधार या विविधता। आध्यात्मिक जगत में विविधता है, इस जगत में भी विविधता हमें पाई जाती है। और संवित का मतलब है नॉलेज, इस जगत में भी भौतिक ज्ञान है जो हमारे कलुषित इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह ने शक्ति का विकृत रूप इस जगत में हमें पाया जाता है और वो क्या है, विषय भोग। अल्लादिनी शक्ति का विकृत रूप जगत में, जिसको भगवान ने भगवत गीता में कहा यही संस्पर्श जा भोगा दुख एवं एक दिन अत्यंत भक्त कहते नतेषु रमते गुणा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है अल्लादिनी शक्ति का जो विकृत रूप है इस जगत में हम वो स्पर्श सुख से हमें अनुभव होता है। और स्पर्श सुख क्या आने वाला है कृष्ण कहते हैं दुख योने, दुख योने योने का मतलब है प्रकट होता है जन्म लेना। तो दुख दुख का जो पहाड़ है वो उत्पन्न होगा। तो ऐसे स्पर्श सुख से विषय हो जो अल्लाह की शक्ति का एक जगत में विकृत रूप है कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रममान नहीं होता। हाँ, तो उसका विकृत रूप यही है इस भौतिक जगत का, जिसको कौन प्रेम हम जिसे कहते हैं। इस भौतिक जगत का जो प्रेम है जो रजोगुण से उत्पन्न है, शुरुआत में अमृत के समान है लेकिन अंत का क्या है, विष, विष के समान है। इसलिए अमेरिका आदि में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस चेक करते हैं दूर दूर के लोगों को नहीं, नजदीक के लोग, पत्र ने मारा होगा, रिलेटिव में से किसी ने मारा होगा। शुरुआत में तो बड़ा अफेक्शन है, बड़ा लव है, लेकिन वही लव हाँ धीरे धीरे विकृत रूप उस जगत में धारण करता है। हाँ, इसलिए हम देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत का ये जो सोच और प्रेम है वो इतना आनंददायी है। तो भगवान का प्रति जो प्रेम है, जो अल्लाह के शक्ति से का प्राप्त है, वो कितना आनंददायी होगा। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान की अल्लाह की शक्ति का एक ड्रॉप का कुछ अंश भी चला जाए, तो व्यक्ति भगवत प्रेम से पागल हो सकता है। तो अल्लाह की शक्ति इस स्वरूपा स्वरूपा में परसोनिक पॉइंट फॉर्म वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। जो भगवान के प्रति जो भगवत प्रेम है वो और गाढ़ा हो जाता है, तो भाव का नाम धारण करता है, और जो दिव्य भावनाएं हैं वो और कंटेंट हो जाती हैं, गाढ़ी हो जाती हैं, तो उसको महाभाव कहा जाता है। और ऐसा महाभाव केवल श्रीमती राधिका में है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण कृष्ण कांता शिरोमणि। तो महाभाव की जो स्वरूपा है, तो कौन है श्रीमती राधिका? राधिका तो कृष्ण के प्रति प्रेम की वर्तमान स्वरूपा है, या भगवान की अनुकंपा भगवान की दया इस जगत में मूर्तिमान रूप धारण करती है, तो श्रीमती राधिका कहा जाता है। तो श्रीमती राधिका प्रेमीकरण स्वरूप देह प्रेम विभागी कृष्ण प्रियंत्र श्रेष्ठा जगत के देवी, उनका स्वरूप प्रेममय है, प्रेममय तनु है। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा, कृष्ण प्रेम भावित कृष्ण शक्ति राधा प्रेरा रहता है। कि कृष्ण के प्रेम से भावना से भावित, वास्तव में कृष्ण भावना भावित शब्द केवल श्रीमती राधा रानी कहते हैं। और इस कृष्ण प्रेम से भावित चिंता चेतना है, इंद्रिया आदि है, ऐसा उनका दिव्य ध्यान श्रीमती राधिका कृष्ण के निज शक्ति है, और मुझे अनुवादनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है। कृष्ण मूल शक्तिमान है, उसी प्रकार के भगवत शक्ति जो मूल शक्ति है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो स्थान है वो नॉर्मल कोई गोपी का स्त्री का स्थान नहीं है, हमारे माँ या बहन या कोई और का स्थान नहीं है, जगत के परे है, दिव्य उनका स्थान है, भगवान की अनुराधनी शक्ति है, सारे शक्तियों के स्रोत है, रमा लक्ष्मी आदि है, इन शक्ति को स्रोत है, उगम स्थान है। तो ऐसी राधे का कृष्ण के टॉप ऑफ डिवोटी है और कृष्ण के अभिन्न है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है। चैतन्य चरितमृत में कहा है, राधा कृष्ण ऐसे सदा मिलकर स्वरूप, तो राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, वो एक ही है, लेकिन लीला रस आस्वादित भरे दुई रूप। इसलिए श्रीमती राधा रानी का प्रातव्य कृष्ण के अभिन्न है। तो आध्यात्मिक जगत जो गोल वृंदावन है, जहाँ श्रीमती राधिका का प्राकट्य हुआ, जब कृष्ण रास मंडल में आध्यात्मिक जगत में गोलक वृंदावन में बैठे हैं, जहाँ सुदर्शन का पर्वत जो पर्वत अर्थ में गोवर्धन के रूप में प्रकट होता है, और वहां कृष्ण बैठे थे, उसी समय कृष्ण सुंदर गार्डन को देख रहे थे, उनके हृदय में भावना आई, आनंद के अनुभूति करने की भावना जागृत हुई। उसी समय कृष्ण के लेफ्ट साइड से एक सौंदर्यवान लाला के वति देवी का प्राकट्य हो जाता है। तो भगवान की सारी शक्तियां उनके लेफ्ट साइड से निकलती हैं, बलराम या उनके जो नाना प्रकार के पुरुष अवतार आदि हैं, विस्तार है, वो भगवान के राइट साइड से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी देवी जो प्रकट हुई और इतने सौंदर्यवान थी, जिन्होंने नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण किए थे, जिनका मुख चंद्रमा के समान केशवमय था, उन्होंने सुंदर भारत की पुष्पों की माला धारण की हुई थी और जिनके प्रकाश से वो जो गार्डन है बहुत अधिक तेजोमय हो गया और वो कृष्ण के मुख चंद्र को देखने लगे, निहारने लगे और श्रीमती राधिका ने जैसे कृष्ण को देखा तुरंत वो समझ गए कि कृष्ण सेवा चाहते हैं, आनंद के आनंद के चाहते हैं। तो उसी क्षण श्रीमती राधिका दौड़ती है गार्डन में, दौड़ती है भागती है सामने और एक फूल को ले लेती है, फूल को तोड़ती है और कृष्ण के चरण में ऑफर करती है। इसलिए उनका राधा नाम शास्त्र में वर्णित किया है कि राधा का मतलब है कि जिनका प्राकट्य आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में रास मंडल में हुआ और धा का मतलब है धावमाना नाम, धावमाना मतलब रनिंग, भागना, दौड़ना। तो जो कृष्ण सेवा के लिए प्रकट होते ही दौड़ पड़े श्रीमती राधिका, कृष्ण की सर्वोच्च सेवा जो करती है या कृष्ण की सेवा उनसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता वो श्रीमती राधा है। इसलिए श्रीमती राधिका का एक नाम कृष्णमयी है। कृष्णमयी का मतलब है कृष्णमय कृष्ण जार भीतर बाहर जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण सुरे। कृष्णमय कृष्ण जार भीतर बाहर, कृष्णमय का मतलब है कि जहां उनके अंदर या बाहर कृष्ण की अनुभूति करती है, जहां जहां नेत्र पड़े जहां जहां उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती है वहां कृष्ण ही पूरी होते हैं, कृष्ण को देखती है। तो ऐसी जो श्रीमती राधिका है वो कृष्ण की लाइफ एंड सोल है, प्राण है और राधिका के भी प्राण कौन है कृष्ण है। और एक चीज कृष्ण ने जब श्रीमती राधा रानी को कृष्ण कुरुक्षेत्र के भूमि में मिले थे तब कृष्ण ने यही चीज श्रीमती राधा रानी को कही थी, क्योंकि राधा रानी बहुत समय के बाद जब कुरुक्षेत्र में मिले तो उन्होंने कहा कि हे ब्रज के प्राण, ब्रज के आत्मा, ब्रज के जीवन, आप क्या कीजिए, आप फिर से अपना जो चरण है वृंदावन में प्रकट कीजिए, आप वृंदावन में आइए। तो कृष्ण कहते हैं कि आप नहीं जानती तो मतरे झुलो मई रात्रि देने। उन्होंने कहा कि आप ही मेरे लिए मेरे स्मरण आदि में पागल नहीं हो रहे हैं, कष्ट अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपके चिंतन में ब्रज के भक्तों के स्मरण आदि में बहुत अधिक विफलता है, बहुत अधिक कष्ट अनुभव कर रहा हूँ, बहुत दुख जाने को न जाने, मेरे पास तो मेरा काउंसलर भी नहीं है जिसके पास जाकर मैं अपना जो दुख है शेयर करूँ। श्रीमती राधिका को कहते हैं कि मेरा जो दुख कोई है नहीं, जिसके पास जाकर मैं अपने हृदय को प्रकट करूँ। इसलिए श्रीमती राधिका को कृष्ण कहते हैं माता पिता सखा जनम, कि ब्रज के जितने भी जन है, माता है, सखा है, पिता आदि है, सभी मोर प्राणता, वो सारे सभी प्राण के सम है, लेकिन साक्षात मोर जीवन, उनमें भी जो भूमिकाएं हैं वो बड़ा साक्षात जीवन है, क्योंकि मोर जीवन है ना जीवन, गोपिकाएं तो ठीक है उनमें भी आप श्रीमती राधिका आप मेरे जीवन के भी जीवन हो। हम इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन आता है कि कितने अधिक श्रीमती राधिका कृष्ण को प्रिय है, लाखों लाखों गोपियां हैं कृष्ण की सेवा के लिए, उनमें भी 16,108 गोपिकाएं श्रेष्ठ है, उनमें भी 108 है, उनमें भी 8 है, उनमें भी 2 है। चैतन्य महाप्रभु कहते तयोर अपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वाधिका, तयोर अपि उभय उभय उन दोनों में भी राधिका सर्वाधिका, राधिका उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। जो 16,000 रानियां भगवान की पर्सनल सेवा में लगी रहती हैं, अपनी सेविका को दासियों को द्वारका में हटाती हैं और खुद उनके लिए सब कुछ काम करती हैं पर्सनली, फिर भी कृष्ण उनकी सेवा से इतनी संतुष्टि अनुभव नहीं करते जितनी संतुष्टि कृष्ण ब्रज की जो रमणिया है या श्रीमती राधिका है उनके कृष्ण अनुभव करते हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं वास्तव में सदा सर्वदा श्रीमती राधिका के हृदय में निवास करता हूँ, क्योंकि राधिका कृष्ण को एक शब्द भी बोलने नहीं सकती। वृंदावन जब द्वारका की सारी रानियों ने श्रीमती राधिका का गुणगान सुना रोहिणी के द्वारा, द्वारका में उन्होंने सुना कि उतनी सौंदर्य रहती है, जितनी सेवा की प्रधानता है उनमें, तो ऐसे राधिका का दर्शन उनके सौंदर्य आदि को देखने के लिए द्वारका की जो मनुष्या है रानियां हैं वो लालसा व्यक्त करेंगे, तब हमारा भाग्योदय होगा। आप किसका दर्शन करेंगे? राधिका का दर्शन करेंगे। तो श्रीमती राधिका एक बार द्वारका में पहुंच जाती है तो अलग अलग सारी रानियां अपना सारा स्थान छोड़कर अपने महल छोड़कर भागती हैं जहाँ श्रीमती राधिका जब गोपी सभा के स्थान है वहां आई थी, तो वहां जाके उनको देखने के लिए। तो सत्य हमारे बैठे श्रीमती राधिका को देखा उसी क्षण उनके सौंदर्य आदि को देख कर वर्षित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी बाकी रानियों का कहना ही है, कृष्ण ने कहा आप सब श्रीमती राधिका का क्या करो, भली भांति ध्यान रखो, उनका केयर करो। तो भगवान ने कहा उनके लिए आप शाम को गर्म दूध दे जाओ, हम वो शाम को समय से पहले दूध का पान करते हैं। तो रश्मि तो बहुत विनम्र सेविका है, हम उनकी बहुत ध्यान रखने वाली है। तो रश्मि कई गर्म दूध दिया, सुबह ग्लास में दूध दिया और वो गए श्रीमती राधिका के पास, उनको उन्होंने दूध ऑफर किया, राधा रानी ने वो दूध दिया और उसका पान किया और रुक्मिणी चली आई वापस। वापस आई तो शाम के समय में कृष्ण के चरणों की सेवा करने लगी। रुक्मिणी ने जब उनकी सेवा कर रही थी तो देखा कि कृष्ण के चरणों में छाले पड़ गए हैं। तो कृष्ण को रुक्मिणी ने पूछा कि आप तो कहाँ चले नहीं, लेकिन फिर भी आपके चरणों में छाले क्यों हैं? तो कृष्ण ने कहा कि आप इस चीज को नहीं समझ सकते। फिर कृष्ण ने कहा कि आप बहुत जिज्ञासु हैं, तो मैं आपको बताने देता हूँ। तो कृष्ण कहने लगे श्री राधिकाया हृदय अरविंदे कदा अरविंदम विराजते हैं। भगवान रुक्मिणी को कहने लगे श्री राधिकाया हृदय अरविंदे, श्रीमती राधिका के हृदय रूपी जो कमल है अरविंद कमल, हृदयारविंदे पादारविंदम ही विराजते में, मेरा जो ये पादारविंद है चरण भी कहते हैं कमल के समान है, हनुमान हृदय भी कहते हैं कमल के समान है। तो कहते मेरे जो पादारविंद है श्रीमती राधिका के हृदय हृदय में सदा के लिए निवास करते हैं। बांध के रखती हैं और मेरे चरणों में इतना भी स्वतंत्रता नहीं है कि लव बहुत क्षण के लिए भी मैं मेरे चरण के हृदय से बाहर निकल नहीं सकते, स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे श्रीमती राधिका का स्थान की सर्वोच्चता को प्रकट करने के लिए वास्तव में व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। हाँ, क्योंकि भागवतम की रचना सारे पुराण में केंद्र का विषय सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है या श्रीमती राधिका आदि नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के एकमात्र जो हीरो है, एकमात्र जो नायक है, केंद्र बिंदु है, तो राधा कृष्ण है या कृष्ण है। इसी कारण से शुक्रदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया और श्रीमद् भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी ने, हम लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी के नाम का उच्चारण नहीं किया, लेकिन शुक्रदेव गोस्वामी के पास एक ड्यूटी था, एक कर्तव्य था। क्या नाम है? परीक्षित महाराज 7 दिनों में अपने शरीर को त्याग करने वाले थे, तो इसका कार्य था 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम डिलीवर करना, 7 दिनों में भागवतम प्रदान करना। और यदि श्रीमती राधिका का नाम वो उच्चारण करते हैं तो वो प्रेम से अभिमुख हो जाते हैं और वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। अभी इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी जो श्रीमती राधा रानी के आध्यात्मिक जगत में श्रोता है, उन्होंने फिर भी श्रीमती राधा रानी के दिव्यता और सर्वोच्चता का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया। जब कृष्ण सारे गोपियों के संग में रास क्रीड़ा करने के लिए शरद ऋतु में हम वृंदावन में उपस्थित हुए थे, उसी समय हजारों हजारों गोपिकाओं को देखकर श्रीमती राधिका उस रास मंडल से चले गए। तो कृष्ण के सारे उस रास मंडल हजारों हजारों गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधिका को ढूंढने के लिए गए, और ये गोपियों भी कृष्ण को ढूंढने के लिए निकले, और निकलते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में अनयाराधितो मौनम भगवान हरेश्वरः। कि अनया का मतलब है कि हम सब से भी अधिक एक गोपी है जो आराधना राधा शब्द आराधना से आया है, कि जो सर्वोत्कृष्ट आराधना करने वाली है वो श्रीमती राधा है। तो गोपिकाएं कहती है अनयाराधितो मौनम मौनम मतलब निश्चय ही उस एक गोपिका के लिए कृष्ण हमें सब को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो उनकी सर्वश्रेष्ठ आराधना करती है भगवान हरे ईश्वरा, जो हरे हैं ईश्वर हैं। यन्नो विहाय विहाय में तो उन्होंने छोड़ दिया, यन्नो विहाय गोविंद प्रेतोयाम अनय उनके लिए इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में अनुरोधा किया है। तो श्रीमती राधिका का है श्रीमती राधिका जो कृष्ण को अट्रैक्ट करने का सामर्थ्य रखती है। कृष्ण को इसलिए उनको कहा गया है जगत मोहन कृष्ण सहर मोहिनी अतएव संसारेर पराधातुरानी। जगत मोहन कृष्ण जो जगत को मोहित करने वाले हैं अपने सारे एट्रीब्यूट के द्वारा, लेकिन उनको ही मोहित करने का सामर्थ्य राधिका रखती है। कृष्ण संदिग्ध शक्ति के कारण सर्वाकर्षक है, लेकिन वही श्रीमती राधिका का रूप अलादिनी शक्ति का है, और अलादिनी शक्ति संदिग्ध शक्ति को इजीली अट्रैक्ट करती है। इसलिए कृष्ण अपने अलादिनी शक्ति श्रीमती राधिका के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। श्रीमती राधिका क्या है? मदन मोहन मोहिनी। भगवान को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन श्रीमती राधिका को कहा जाता है परम ईश्वर ईश्वरी। परमेश्वर को भी क्या करती है? वो नियंत्रण में रहती है। श्री प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद कह रहे थे वृंदावन में अपने भक्तों को कि आपने अभी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत सारे किताबें आप पढ़ रहे हैं, आज ये बताइए कि आपको ये पता चला है ग्रंथों में कि कृष्ण के कृष्ण से ज्यादा बलवान कौन है, तो ग्रंथों शांत हो गए, हमको पता नहीं पड़ा। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण से भी ज्यादा बल धारण करने वाला कोई है इस जगत में, तो वो कौन है? राधा रानी है, वो बलवान है। तो हमारे आचार्य गण कृष्ण के राधा कृष्ण के दिव्य लीला का वर्णन करते हैं, हम उसमें वो कहते हैं कि कितना बलशाली है बलवान है श्रीमती राधिका। और वास्तव में श्री अल्लाह की शक्ति के कारण ही कृष्ण स्वयं ऐश्वर्य बोल रहे हैं, छह प्रकार के ऐश्वर्य कृष्ण धारण कर रहे हैं। तो एक बार कृष्ण अपने सखाओं को ढूंढने के लिए भांडेर वन जाते हैं, बारह वन है अलग अलग में भांडेर वन है जहाँ कटक वृक्ष है बड़ा सा। तो कृष्ण हर समय उस वृक्ष के नीचे अपने सखाओं के संग में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं मिलाया करते थे। तो कृष्ण जब उनको ढूंढने गए तो वहां कोई सखागण नहीं थे, वहां गोपिकाएं थी और वो गोपिकाएं कृष्ण की चर्चा कर रही थी, कृष्ण के बारे में बातें कर रही थी। तो कृष्ण देखते देखते कभी गए तो उस समय गोपिकाओं ने अपना जो चर्चा का जो विषय है वो चेंज कर दिया, अभी कुछ नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है। तो कृष्ण गए तो कृष्ण ने कहा मैं तो यहाँ अपने सखाओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा क्या करते हो अपने सखाओं के साथ? उन्होंने कहा रेसलिंग मैच करते हैं, कुश्ती मल्ल युद्ध करते हैं और कई सारे खेल खेलते रहते हैं, और हर समय मैं ही जीतता हूँ। इसने कहा, कृष्ण ने कहा मैं जीतता हूँ हर समय। तो उस समय जो ललिता है, ललिता सती कृष्ण को कहती है कि एक पॉसिबल है, आप हर समय नहीं जीतते हो, आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता है कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, कितना शक्ति है मुझ में। आपको याद है कितने सारे ब्रज में आंसू आए थे, उसको कितने मारा, छोटरा से लेकर 50 आधार से उन सबको हमने मारा है। तो ललिता देवी जो बहुत भक्तृत्व में बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में आपके अंदर जो सामर्थ्य या शक्ति का बल आया है, वो इसलिए आया है कि आप हमारे जो प्राण शक्ति है श्रीमती राधिका है, उन्होंने कुक किया हुआ, क्या कहेंगे, बनाया हुआ भोजन जो बनाती है, कुकिंग करती है, वो भोजन आप खा रहे हो, इसलिए आपके अंदर क्या आया, बल और सामर्थ्य आया है। क्योंकि दुर्वासा मुनि जब बचपन आए थे तो सारी छोटी छोटी गोपिकाएं खेल रही थी, तो दुर्वासा मुनि को आए तो सारे भाग गए, बहुत डेंजर है मुनि है, तो वो अक्षिमा के दावे का खड़ी खेल रहेगा, क्या सेवा करो, रहने का गरीब स्पीकर बनाओ, तुरंत स्पीकर के पास आपके आगे आए, तुरंत सारी प्रिपेयर बनाने की जो चीजें हैं इकट्ठा करके प्रिपेयर बनाती है। और जरूरत सबको प्रदान कर दी, जरूरत हमने जैसे टेस्ट करते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा जो प्रिपेयर है, ऐसा व्यंजन इस जगत में कोई भी बना नहीं सकता, ये तो केवल महा जो दिव्य आधार शक्ति है भगवान की, वही बना सकती है। तो श्रीमती राधिका को उन्होंने कहा कि जो भी आपके बनाए हुए भोजन को खाएगा वो और सीमित बल प्राप्त करेगा, और सीमित बल भी और हमेशा युवावस्था में रहेगा, और ये नहीं होगा उसको वृद्ध, क्या कहते हैं, वृद्धावस्था वगैरह नहीं मिलेगी या बीमार नहीं होंगे। तो ऐसे कई सारे गुण थे, छह ऐश्वर्य को उन्होंने वहां बनाया था। तो ललिता ने कहा कि आपके अंदर इतने सामर्थ्य था इन आसुरों को मारने का, क्योंकि सारे शक्ति का जो स्रोत है वो हमारे प्राण शक्ति श्रीमती राधिका है। उन्होंने कहा तो छोड़ो, मैंने तो अपने 7 साल के आयु में 7 दिन हर की सबसे छोटी उंगली पर उसके अग्र भाग में क्या उगाया था, गोबर ध्यान। तो उन्होंने कहा अच्छा, गोपीकार कहने लगी, ललिता ने कहा असंभव, हमारे सारे गोपिकाएं अपना अपना डंडा लेकर पर्वत को उठा रहे और आप सोच रहे मैंने उठाया। तो कृष्ण इस प्रकार से भाव विवाद हो रहा था और भगवान ने कहा कि इमान जो राजा रानी के जो भाई है श्री राम है उनको भी मैं हराता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बड़ा चलाकी बोल रहे हो, अभी आपको फाइट करना ही है, कुश्ती करनी है, तो हमारे जो प्राण शक्ति है श्रीमती राधिका है उनके साथ करके दिखाऊ, उनके उनको हरा के दिखाऊ। तो भगवान जी का चैलेंज ये मैच ये तो छोटा सा काम है, तो भगवान तैयार हो गया और सारे ब्रज में है न्यूज फैल गई, क्योंकि वहां तो सारे जो तोते आते हैं सब न्यूज इधर इधर ही फैलाते हैं, सब जगह न्यूज फैल गई कि एक दिन आज डिसाइड किया गया कि इस दिन श्रीमती राधिका में और कृष्ण में कुश्ती होने वाली है, रेसलिंग मैच होने वाला है। तो उस समय लेकिन उनमें पेरेंट्स माता पिता को अलाउड नहीं था, केवल सारे जो गौर प्रकार है गोपीकार है हिरण है तोता है मोर है इन सबको अलाउड था, ये सारे लेकिन इकट्ठा हो गए। तो उस समय दो पार्टी में विभाजन हो गया कृष्ण को सजाने लगे, उनको मल्ल युद्ध के लिए कुश्ती के लिए जो आवश्यक जो दुपट्टा है और वस्त्र आभूषण है वो पहना है और तैयार किया। और फाइनली मधुमंगल ने क्या किया कि अभी मल्ल युद्ध का जो क्या करेंगे वहाँ मुताराज से पहले मधुमंगल ने कहा कि आपका वो फाइनली घटाज करता हूँ, अच्छे से उनका आचरण आए ताकि इसमें फल मिले, अगर वो सारे फलों के स्वरूप है कृष्ण। तो लेकिन जब ये सब किया तो उसी समय ललिता विशाखा श्रीमती राधा रानी को डेकोरेट कर रही थी, जिस प्रकार से उनके वस्त्र बांध रही थी कि उनका साड़ी डाली है मंत्र युद्ध करते समय पाव में आटक ना जाए, तो बड़ा ध्यान दिया जा रहा था प्रॉपरली। तो ऐसा उनको डेकोरेट किया और उनका जो पहलू क्या कहते हैं वो डरा हुआ था, तो कृष्ण बिल्कुल तैयार थे और अपने गुरु थे, तो कहाँ बातों को गए थे नीचे होंगे वहाँ से बाहर निकले, कृष्ण तो बड़े जोर शोर में निकले थे, लेकिन उसी समय जोर से हवा आई जिस हवा ने श्रीमती राधे का था स्पर्श किया, वो बड़ी हवा ऑफरिंग के रूप में लव इन ऑफरिंग प्रेम का जो ऑफरिंग है वो आकर कृष्ण के शरीर में टच हो गए, जो सुगंध को ले आए थे इसका सुगंध श्रीमती राधे का था, और जिसके कारण ऐसे हवा ने टच किया कृष्ण के शरीर को उनके घुटने हिलने लगे। कृष्णा मधुमंगल ने कहा कि आप तो आगे अंदर जाने से पहले इतना बिल्कुल आप में आ रहा है, हमारा जो पार्टी है वो अभी पराजित करने वाला है। फिर भी मधुमंगल ने कहा मेरा जो कंधा तो स्ट्रॉन्ग है, अब यह मेरे शोल्डर में हाथ रखो मैं आपको ले सकता हूँ। तो यहाँ श्रीमती राधिका भी आई और ग्राउंड में आई रही थी, कृष्ण तो पूरे उतर गए उस ग्राउंड में मधुमंगल के साथ कंधे को हाथ डालते, और जैसे कृष्ण उतरे सारे गोपकताओं ने अपना अपना तरबर पकड़े निकाला ऊपर से, जैसे क्रिकेट मैच में चलाते स्थिति मारते हैं कुछ कुछ करते रहते, सारे गोपकता हाथ कहने लगे कृष्ण की जय हो कृष्ण की जय हो, उनको प्रोत्साहन करने लगे। कृष्ण को बहुत अतिपा अच्छा नहीं लगता अपनी जय हो, कृष्ण तो बहुत सारे बल आनंद कर रहे थे। उसी समय श्रीमती राधिका आती है जिन्होंने अपना जो मुख्य कमल है वो ढका हुआ था, तो ललिता विशाखा आदि करके उनके सामने व्यक्ति उतरी, तो उनकी जो कोच है प्रशिक्षण लेने आने वाली ललिता जी हैं, उन्होंने उनके कान में कहा कैसे आपको क्या ट्रिक्स है जीतने की, क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या आपको करना है। तो जैसे कहा उसमें से ललिता ने कहा उसी क्षण कि आप क्या करो अपना एक जो घूंघट है थोड़ा सा ऊपर करो और लॉन्ग साइड ग्लांस मतलब ये जो लंबा तिरछी नजर है वो किसमें डालो कृष्ण पर, बस ये पहला ट्रिक था। अलग अलग ट्रिक है, तो श्रीमती राधिका केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए है, इसलिए सर्वाधिकार सबसे अधिक है श्रेष्ठ है। तो जैसे कृष्ण सामने थे श्रीमती राधिका ने अपना मुंगल उठाया और इतना लंबा कृष्ण नजर ऐसे डाली सीधा कृष्ण के ऊपर, तो आप समझ नहीं सकते कृष्ण क्या हालत हुई होगी। कृष्ण के जो घुटने हैं उतने स्ट्रांग है वो बटर के समान सीधा नहीं गए, और जो उसके धड़ान हम कृष्ण गिरे नहीं मूर्छित हो गए लंबे समय के लिए, तो सारे गोपियां चिल्लाने लगी जय जय श्री राधे, जोर से जय जय श्री राधे। तो दो समय आदि कहते हैं कि ऐसे श्रीमती राधिका इतना सामर्थ्य धारण करती है, कृष्ण को कृष्ण भी हाँ जिनके प्रश्न है इतनी बलवान है, तो ऐसे श्रीमती राधिका का जो प्रॉपर्टी है वो कृष्ण है, या कृष्ण राधा रानी की प्रॉपर्टी है। द्रौपदी के ईश्वर में कहते हैं कृष्ण कृष्ण की प्रॉपर्टी नहीं है, कृष्ण अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने अपने आप को बेच दिया है, इसलिए कृष्ण को अप्रोच करना मतलब श्रीमती राधा रानी को अप्रोच करना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि श्रीमती राधा रानी स्टोर हाउस है भगवत भक्ति का, इसलिए कृष्ण ने कहा शिव जी को कहते हैं कृष्ण कि मेरा शरण ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को मेरे जो प्रिया है श्रीमती राधिका का आश्रय लेना चाहिए। और प्रेरणा श्रीमती राधिका अपने आचरण से सिखाती है कि एक व्यक्ति को कृष्ण को अप्रोच करना है तो उसको सबसे पहले किसको अप्रोच करना चाहिए। एक लीला आती है कि सारे एक बार श्रीमती राधिका कृष्ण के विराह में मूर्छित हुई थी और जब जब जाती है अपने रोग के कलशाना में तो वहाँ श्रीमती राधिका उठते ही स्नान आदि करती है, अपने आप को सजाती है और हरे नाम का उच्चारण करती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब वो और श्रीमती राधिका हरे नाम का उच्चारण करते करते अपने महल के अपने रूम के विंडो के पास आती है और खिड़की के पास आकर देखती है वृंदावन का रमणीय वातावरण ब्रज के सुंदरता को निहारती है और हर क्षण देखती है कि कोई चिन्ह कृष्ण आ तो नहीं रहे हैं वहां से, उनको कोई आने का चिन्ह तो नहीं नजर आ रहा है मुझे, सुंदरता को देखती जा रही थी। और फिर अचानक खुद सोचती है, वो कहती है कि मेरी स्थिति तो बहुत ही विकट है, क्या परेशानी है कि मैं तो एक बहुने व्यक्ति के समान हो और कृष्ण तो सागर के समान है और मैं कृष्ण सागर के उस पार है और मैं उस सागर को पार करना चाहती हूँ। तो देखना व्यक्ति कहाँ सागर को पार कर सकता है, वो तो डूब सकता है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, आश्रय की आवश्यकता है। श्रीमती राधिका ने कहा कि वास्तव में मैं मेरी तो कामना क्या है, नंद महाराज के जो पुत्र है उनको प्राप्त करने की मैं कामना अभिलाषा लेकर बैठी हूँ और उनको प्राप्त करना संभव नहीं है जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर महत् कृपा ना हो। महत् में महान महापुरुष जिसको भगवान ने कहा महात्मा तो मां पार्वती दैवी प्रकृति माश्रिता। तो श्रीमती राधिका ने कहा कि जब तक व्यक्ति महान जो व्यक्ति है उनका आश्रय नहीं ग्रहण करता, महान व्यक्ति का आश्रय नहीं ग्रहण करता, तब तक वो कृष्ण का आश्रय या कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा उसके लिए असंभव है। श्रीमती राधिका ने कहा कृष्ण अनुग्रह बिना महान अनुग्रह नास्ति, कि एक महान व्यक्ति के महान व्यक्ति के अनुग्रह के बिना कृष्ण का अनुग्रह कृष्ण की अनुकंपा कृपा प्राप्त करना असंभव है। तो श्रीमती राधिका सारे गोपियां बैठी थी अष्टी आगे बढ़े हैं, सबको पूछा कि आप बताइए कृष्ण को प्राप्त करना है जो हरि है तो इसका मतलब हमें किसी हरि भक्त का आश्रय लेना होगा, तो कौन है वो सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त कौन है। सारी गोपिकाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी कौन है कौन है। तो इन्होंने कहा राधिका ने स्वयं बोला कि मैंने गर्भमणि से सुना था गिरीन्द्र एव मुख्यम गिरीन्द्र पर्वत इंद्र मित्र राजा गिरीन्द्र कौन है ब्रज में गिरिराज गोवर्धन गिरीन्द्र एव मुख्यम कि गिरिराज ही कृष्ण के सारे भक्तों में टॉप मोस्ट डिवोटी है। श्रीमती राधिका की बात सुनी तो राधा राधिका ने कहा कि उन्होंने तो हमें इंद्र के कोप से बचाया था। हाँ तो इस प्रकार से श्रीमती राधिका ने तुरंत उनके मुख से श्लोक निकला जिनका श्लोक भागवत में पाया जाता है, अंताय माधुर बला हरि कांत बलियो यन्नाम कृष्ण चरण स्पर्श प्रपंचा। तो उन्होंने कहा अंताय माधुर बला हरि कांत बलियो कि ये जो कृष्ण के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ सेवक जिसको श्रीमती राधिका ने टाइटल दिया डेजिग्नेशन दिया उपाधि दिया वो क्या है हरि दास वर्य वर्य में श्रेष्ठ कि हरि दासों में श्रेष्ठ है कौन है गिरिराज है गोवर्धन है यह राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा प्रमोद मीन्स आनंद कि हर रोज विदाउट फेल राम कृष्ण कृष्ण और बलराम के चरण स्पर्श से हर समय आनंद का अनुभव करते हैं। शरण, शरण का दूसरा वर्णन आचार्य कर रहे थे आचरण। आचरण में कृष्ण और श्रीमती राधिका आगे की जो लीलाएं हैं इसका जो स्पर्श आगे प्राप्त करके गिरिराज आनंदित होता है। मानव तनों की